औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, स्पेशल प्रोग्राम मजलिस उलमा शिया यूरोप विद अहले बैत के साथ आपका मेज़बान सलमान हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि ये जानते हैं कि हम हर संडे को ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं और मजलिस उलमा शिया यूरोप के हवाले से, उनकी अपडेट्स के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से और मुख्तलिफ जो उनकी कारकर्दगी पूरे यूके में मुख्तलिफ सेंटर्स में जो वो काम और फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ उलमा, उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा जो लास्ट प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी वो इमामिया यूथ के हवाले से की थी। अगर आपको याद हो, इमामिया काउंसिल के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं, इमामिया यूथ के हवाले से हमने एक पूरा प्रोग्राम डेडिकेट किया। तो इस हवाले से हमारी कोशिश होगी कि एवरी संडे को हम ये प्रोग्राम मजलिस उलमा शिया यूरोप के हवाले से ये आपकी खिदमत में पेश करें, ताकि तमाम सेंटर्स जो पूरे यूके और यूरोप में हैं वो तमाम मोमिनीन, उनका एक आपस में रब्त कायम हो सके और वो तमाम जो हैं एक दूसरे से रब्ता कायम करें। और जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया कि हम एक इनफरादी ज़िंदगी से निकल कर एक इज्तमाई ज़िंदगी में दाखिल हो सकें और एक उम्मत होने का सबूत दे सकें, तो आज जो प्रोग्राम हमने आपकी खिदमत में पेश करना है उसके हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे इस साइड पर मौजूद हैं मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहिब, जो कि मजलिस उलमा शिया यूरोप के मरकज़ी सदर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनको स्टूडियो में खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
उनके साथ मौलाना हसन मारूफ़ी साहिब मौजूद हैं, जो कि मरकज़ी नायब सदर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं मजलिस उलमा शिया यूरोप में, और इनके आप अहले बैत टीवी की स्क्रीन पर भी काफ़ी प्रोग्राम्स देखते रहते हैं। सहर विद अहले बैत में मौलाना मुशर्रफ हुसैनी के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम जो है वो पूरे महीने आपकी खिदमत में पेश किया, जिसकी आपने भी तारीफ़ की और बड़े अच्छे तरीके से उसको सराहा। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना नियाज़ हुसैन नकवी साहिब, जो कि खसूसी दावत पर न्यू पोर्ट से तशरीफ़ लाए हैं और मरकज़ी जो हैं वो सेक्रेटरी राबता के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मजलिस उलमा शिया यूरोप में। उनके साथ मौलाना अजमत अब्बास ज़ुहैरी साहिब हैं, जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी फाइनेंस हैं। उनको भी स्टूडियो में खुश आमदीद, जनरल सेक्रेटरी, उनको भी स्टूडियो में खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
इंशाल्लाह इन उलमा से जो है वो हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, और मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करेंगे। ईद उल फितर के हवाले से भी गुफ्तगू होगी और माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी, कि जिस तरह माह रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे विदा हो गया और ईद उल फितर और एक नया महीना जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें किस तरह अपनी रूहानी जो हमने सफ़र इख्तियार किया हुआ था माह रमज़ानुल मुबारक में, उसे किस तरह जारी रखना है, और ईद उल फितर के मौके पर हमें किस तरह ईद उल फितर जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें तालीमात दी हैं उसके मुताबिक किस तरह गुजारना है। इंशाल्लाह इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मौलाना, सबसे पहले तो आप सबको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ कि ईद उल फितर के इन बिजी अयाम में जो है आपने अहले बैत टीवी के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले माह रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे विदा हुआ और ईद उल फितर में जो है हम आज तीसरा दिन है ईद उल फितर का, तो इस हवाले से आम मोमिनीन को ये बताएं कि वो किस तरह माह रमज़ानुल मुबारक में जो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी गेन की वो किस तरह बाकी दिनों में कायम रख सकते हैं।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माह मुबारक रमज़ान, इसकी रातें, इसके दिन, इसके तमाम घड़ियाँ साथें, एक बेहतरीन महीना के जो जिसमें वनोमुकफ़ी है इबादत, यानी पैगंबर सलाम यहाँ तक कहा कि एक मोमिन अगर ईमान रखता होगा, रोज़े रख रहा है, इबादत कर रहा था, उसका सोना भी इबादत है, उसका सांस लेना तस्बीह है, और बेहतरीन महीना जिसकी बहरहाल जिस महीने में जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको रिचार्ज किया जाता है, तो ईमान वालों के लिए ये महीना चार्जिंग का महीना, वो अपनी रूहानियत दोबारा अपने अंदर पैदा करते हैं और स्पिरिचुअली अपने आप को दोबारा रिचार्ज करते हैं कि पूरे साल में वो इबादत का, बाज़ लोग बस का बाज़ का बैटरी कम चार्ज होती है, एक महीने में ख़त्म हो जाती है, बाज़ का दो तीन महीने चलती है, छः महीने चलती है, और कुछ लोग इतनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं 11 महीने उस बैटरी को चला लेते हैं, अगले माह रमज़ान तक वो स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड रहते हैं। तो इस महीने में खुदावंद मुताल ने हमें एक मोहलत दी है, हमें एक मौका दिया है कि हम अपने आप को खुदावंद मुताल के लिए खालिस करें और हर तरह से अपने आप को शैतान से दूर करें, और एक ऐसा महीना कि जिसके अंदर रूहानियत का और एक फ़िल्टर के तौर पे इसको बन रखा गया कि इसमें जब आप इसे गो थ्रू हो जाते हैं, इसे पार होते हैं, तो तमाम गुनाहों से पाक होना चाहिए। अल्लाह कहता है कि इस फ़िल्टर से जो चीज़ गुजर जाए वो पाक होगी, लेकिन सिर्फ गुजर जाना, अब बहुत से लोग ना रोज़े रख रहे हैं, मानते ही नहीं खुदा को, तो उन्होंने इस फ़िल्टर को अवॉइड किया, वो इस फ़िल्टर में आए ही नहीं, शाम दाखिल ही नहीं हुए। तो एक फ़िल्टर का महीना है जिसके अंदर से अगर आप वाकयान सही तरह से गुजर जाएं तो आपके सारे गुनाह माफ़ हैं। मग़फ़रत है, मग़फ़रत का, तौबा का महीना है, तो अल्लाह सुबहान व तआला जो है वो इस महीने में इंसान की मग़फ़रत कर देता है, और मासूम अलैहिस्सलाम के, मासूमीन अलैहिस्सलाम के अल्फाज़ हैं کہ یہ مہینہ یعنی جس میں جو اس مہینے میں نہ بخشا جائے وہ شقی ہے.
بالکل.
تو بہرحال ایک محرومیت کا احساس ہوتا ہے کہ جب انسان اس مہینے کو کھو دیتا ہے تو انسان اب محروم ہو گیا اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے. اس مہینے کے اندر قرآن کی جو ایک مرتبہ لکھل شعین ربیع و ربیع القرآن رمضان حدیث ظاہر خطیب مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار جو ہے وہ ماہ رمضان ہے. زیادہ پڑھا جاتا ہے، خود بھی اس کی ہم برکات دیکھتے ہیں، اور اس مہینے میں وہی کام جو ہم دوسرے مہینوں میں کر رہے ہوتے ہیں اس مہینے میں اس کا کئی گنا زیادہ ثواب ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ہے بعض روایت کے مطابق. اور دوسروں کا اس میں سوچنا ہمیں ایک خود غرضی سے دور لے کے جاتا ہے. تو اب وہی چیزیں اپنے اندر باقی رکھنا، بس اسی کا نام روحانیت ہے، اسی کا نام ہے ماہ رمضان سے استفادہ، کہ انسان ان چیزوں کو باقی رکھے، اثرات نظر آئیں. امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب آپ کسی پھول والے کے پاس یا کسی عطر فروش کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں نا، تو کچھ دیر تک اس عطر کی خوشبو آپ میں آتی رہتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں جو بھی حج پہ جائے گا، زیارات پہ جائے گا، تو اس میں کچھ دیر تک خوشبو آنی چاہیے کہ لوگ محسوس کریں کہ ہاں یہ خانہ کعبہ سے ہو کے آیا ہے، یہ زیارات سے ہو کے آیا ہے. تو زمان و مکان دو چیزیں ہیں، مکان یعنی خانہ کعبہ ہے، زیارات ہیں آئمہ علیہ السلام کی، اور زمان یہ ہے کہ جی آپ زمان ماہ رمضان بہترین زمان ہے. اب آپ ماہ رمضان سے باہر نکل کے آئے ہیں، اس میں آپ نے عبادات کی ہیں، اس مہینے میں عبادات کا ہمارے میں اندر اثر نظر آنا چاہیے.
بالکل. مولانا حسن معروفی صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عید الفطر میں جس طرح اہل بیت علیہم السلام نے جو ہمیں جو تعلیمات دی ہیں کہ عید الفطر کو کس طریقے سے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے گزارنا چاہیے، کیونکہ آج کل آپ جو معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ رسمیں اور رواج رائج ہو چکے ہیں کہ جو عید الفطر سے منسوب ہو چکے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ غیر اسلامی روایات جو ہیں وہ بھی شامل ہو چکی ہیں، تو اہل بیت علیہم السلام ہمیں کیا تعلیمات دیتے ہیں کہ ہم عید الفطر کو کس طریقے سے گزاریں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سوال ہے، اور یقیناً اگر تھوڑی سی توجہ ہو اس بات کی طرف، تو جتنے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عام نمازوں سے ذرا سا ہٹ کر کے نماز ہے کہ اس میں 9 قنوت پڑھے جاتے ہیں، اور 9 قنوت میں 9 دفعہ جو ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ انت دخلنی فی کل خرین دخلت فیہ محمد و آل محمد، وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد. پردگارا ہمیں ان تمام بھلائیوں اور نیکیوں اور اچھائیوں میں شامل کرنا جس میں تو نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل کیا ہے، اور ان تمام برائیوں سے ہمیں بچانا، نکال کے رکھنا جن برائیوں سے تو نے اہل بیت کو بچا کے رکھا ہے. یعنی اس سے خود اندازہ ہے کہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی دعا کر رہے ہیں، کتنی بڑی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان تمام تصور کریں تو کہاں اہل بیت اور کہاں ہم، سوچیں کہ کہاں ذرہ اور کہاں آفتاب، اس کی بھی نسبت دینا جو ہے مشکل ہے.
بالکل.
لیکن دعا کتنی بڑی ہے کہ پروردگار تمام ان برائیوں سے بچا کے رکھنا جن سے، یعنی ہم عصمت کی دعا کر رہے ہیں، ہم اپنے معصوم ہونے کی دعا کر رہے ہیں. اور میں یہ بات بھی کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً اگر دیکھا جائے تو میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، اس میں یہ ہے کہ سمی العید عیدن کیوں رکھے گئے، قیل کہا گیا ہے کہ عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے، لئن الناس یعود فیہ بالتوبۃ والدعاء. لوگ پلٹ کے آتے ہیں، یعود الی ربہم، اپنے معبود کی طرف پلٹ کے آتے ہیں توبہ کے لیے اور کچھ مانگنے کے لیے. عید کے دن کی جو دعا بھی ہے، اس دعا کا بھی مفہوم یہی ہے کہ پروردگارہ جس سے بھی، جس کسی کو بھی کسی سے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے وہ جاتا ہے اس کے پاس وفد کی شکل میں، اکیلے وہاں جاتا ہے کہ وہاں سے ہمیں ملے گا. اور آج ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں وفد کی شکل میں کچھ لینے کے لیے، کچھ لینے، ہم تو کچھ نہیں لے کر کے آئے، ہمارے پاس کوئی عمل وغیرہ نہیں ہے کہ جس کا ہم سہارا لیں، بس تیری رحمت کے سہارا ہم آئے ہیں کہ تو آج دینے کے لیے آیا. تو یقیناً پروردگار عالم اس دن معاف کر دے گا، معاف کرے گا. میں نے اس سلسلے میں روایت تو نہیں دیکھے، مگر حج کے سلسلے میں ضرور روایت دیکھی ہے کہ اگر کوئی شخص حج میں جاتا اور میدان عرفہ سے باہر نکلتا ہے، تو اگر جو شخص بھی یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں معاف ہوئے، تو معصوم نے فرمایا ہے کہ خالی یہی سوچنا سب سے بڑا گناہ ہے، کہ جس نے یہ کہا ہے معاف کر دینے کے لیے کہ میں نے یہاں سے جو بلایا ہے، اپنے مہمان بلایا، جب وہاں سے جا رہا ہے معاف کر دے گا، تو یہ سوچنا ہے اس کا مطلب کہ اللہ کی رحمت پر شک ہو رہا ہے.
بالکل.
ایسے عید کے دن اگر انسان آ رہا ہے اپنے گھر سے، اس کو تو خود مولا امیر المومنین نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، कि रास्ते बदल करके है मुस्तहबात में से जिस रास्ते से आदमी जाए जब वापस हो तो दूसरे रास्ते से आए, तो जिस रास्ते से जा रहा तसव्वुर करे कि जैसे लोग कब्रों से निकल करके महशर में जा रहे होंगे और फिर वहाँ से जब पलट रहे होंगे तो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे मसले हिसाब किताब के बाद, वैसे ही जब आ रहा हो तो तसव्वुर करे हम हिसाब किताब के लिए जा रहे हैं और जब वापस आ रहा हो तो गोया को उस तरह से पा के हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो खुलासा उसका यही निकलता है कि आदमी अल्लाह की बारगाह में जब तौबा और दुआ के लिए जाता तो उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। और जो हमने 9 मरतबा कुनूत में बात की कि हमें वो ज़िंदगी गुजारने की, तो अगर उसने माफ़ कर दिया है गुनाहों को तो ख़ुद हमें ये देखना चाहिए है। मैं अपने यहाँ खुतबा दे रहा था उसमें कहा था कि ईद के दिन आदमी जो है नया कपड़ा पहन लेता है तो जहाँ कहीं बैठ रहा होता तो पहले देखता है कि कहीं गर्द तो नहीं लगे, कि मेरा कपड़े पर कहीं धब्बा तो नहीं लग जाएगा। अच्छा जब जाइएगा तो कपड़े को ना देखिएगा, जब यहाँ से जाइएगा आप तो आप यकीन करके जाए कि अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया है, आपका किरदार का दामन जो है साफ़ हो चुका है। कहीं भी जाइएगा तो ये सोचिए कहीं इस पर धब्बा तो नहीं लग जाएगा, कहीं इस पर धब्बा तो नहीं लग जाएगा, पढ़ते अल्लाह ने तो हमको साफ़ कर दिया है।
बिल्कुल,
तो ये यकीनन अगर उस पर बाकी रहे तो अहले बैत मुसल्लम से जो है करीब होगा और उस करीब होने के साथ साथ जो है यकीनन वो बुराइयों से बचता हुआ महफूज रहेगा, एक। और दूसरी कि मैंने जो बात कही थी कि हज के सिलसिले में यह कि अल्लाह जब माफ़ कर देता है तो उसे मौका भी देता है, ये रिवायत मेरे सामने है, माफ़ कर देता है तो मौका देता है, इंसान है भूले से फिर उस तरफ जा रहा होगा, मौका देता है कि फ़ौरन किरामन कातिबीन को हुक्म नहीं देता है कि वो फ़ौरन उसके गुनाह को लिखें, शायद उसको याद आ जाए कि मैं तो वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ माफ़ कर दिया गया है, मैं तो वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ से माफ़ कर दिया गया है। तो कुछ मौका 3 से लेकर 6 महीने तक रवायत में है कि अल्लाह जो है मौका देता है कि अभी ना लिखा जाए, शायद इसको याद आ जाए, शायद इसको याद आ जाए। हम ईद के बाद भी ये कह सकते हैं कि अगर अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो अभी ये मौका है, हम ये कह करके ये सोच करके कि अब तो ईद है, ईद का दिन है, और ये सोच करके आपने उस पाको पाकिज़ा दामन को दाग धब्बे से फिर जो है आशना ना कराएं। ये यकना बैठ जैसी ज़िंदगी या उनके रास्ते पर चलने की ज़िंदगी होगी ईद के बाद,
ईद के बाद, यानी हम हर वक्त ये ख्याल में रखें कि कहीं कोई धब्बा ना लग जाए, यानी फिर इंसान का दिल खुद इस बात की गवाही देगा कि मैं इस बुराई के नज़दीक ना जाऊँ। जी मौलाना नियाज हुसैन नकवी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप पहले बार TV स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा न्यू पोर्ट के हवाले से कि उसमें आप जो फ़राइज सर अंजाम दे रहे हैं वहाँ पर ईद उल फ़ित्र जो है वो किस जोश व जज्बे से मनाई गई और कितने मोमिनीन वहाँ मौजूद हैं?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। न्यूपोर्ट हमारे UK के उन शहरों में से है जहाँ पे मोमिनीन काफ़ी अरसे से आबाद हैं और वहाँ पे 2 मराकज़ हैं। हमारे सेंटर के अंदर पूरे माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ मोमिनीन आते हैं, नमाज में शिरकत होती है और काफ़ी तादाद में ख़वातीन, मर्द, हज़रात, बच्चे आते हैं और माशाल्लाह अफ्तारी भी होती है मुसलसल 30 दिन। और चंद सालों से अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ का सिलसिला भी वहाँ पे शुरू हुआ है और ख़ास तौर पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा जोश के साथ और वलवले के साथ शरीक होती हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ पूरा साल मदरसा होता है, बच्चों की तालीम का इंतज़ाम है, तकरीबन 150 बच्चे हमारे यहाँ 5 डेज़ अ वीक पढ़ते हैं, उनको कुरान की तालीम दी जाती है और इस्लामिक स्टडीज़ उनको पढ़ाई जाती है, उर्दू ज़बान की तालीम दी जाती है और माशाल्लाह तकरीबन 15 से 16 वॉलंटियर्स ख़वातीन ज़्यादा तौर पर आती हैं और ये ज़हमत फरमाती हैं और बच्चों को तालीम देती हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जोश व खरोश रहता है पूरा साल। उसके अलावा शब जुमा को दुआ कुमेल का प्रोग्राम होता है, नमाज होती है, फिर मातमदारी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोग्राम।
और जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं, बसते हैं, उनकी तरफ से आपको कैसा रिस्पांस सेंटर्स में मिलता है, यानी इफ्तारी के टाइम और खसूसी तौर पर नमाज के औकात में?
माशाल्लाह माह रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा बरकत होती है लोगों के दरमियान और आते हैं, शरीक होते हैं नमाज जमात में। हमारे पास जगह भी नहीं होती, पूरा हॉल भर जाता है ख़वातीन और मर्दों के साथ और माशाल्लाह लोगों में जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। लोग चाहते हैं कि आप लोगों की रहनुमाई हो, लोगों को पता चले, उनके फ़राइज़ से आशनाई हो, तो लोग आते हैं, उलमा को मानते हैं और उनकी बातें सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं।
अच्छा, दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि आप न्यू पोर्ट से जो है वो मजलिस उलमा शिया के हवाले से जो एक्टिविटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं, यानी उस जोन के बारे में अगर कुछ आप ऑडियंस को बताएँ कि कौन से जोन से ताल्लुक़ रखते हैं और किस किस्म की एक्टिविटीज़ जारी हैं?
जी, हमारा जोन जो है वो अमार यासर जोन है।
ठीक,
उसमें तकरीबन 7 सेंटर आते हैं। انشاءاللہ اگلے ویک پروگرام ہوگا ہمارے زون کے سلسلے میں
انشاءاللہ,
تو انشاءاللہ تفصیل سے انشاءاللہ عرض کریں گے.
بالکل جی. مولانا عظمت عباس صاحب کی طرف اب آنا چاہوں گا. جیسا کہ مولانا نے ذکر کیا کہ اہل بیت علیہم السلام ہمیں کس قسم کی عید, جو ہم سے کس طرح وہ چاہ رہے ہیں عید منانا, تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں آپ سینٹرز کا اور مساجد کا رول کس طرح دیکھتے ہیں, یعنی لوگوں کو کس طرح اس طرف مائل کیا جائے کہ وہ غیر اسلامی روایات سے نکل کر جو صحیح اسلامی روایات ہیں ان کی طرف مائل ہو سکیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں اکثر لوگ علماء کے ساتھ جو مربوط ہیں الحمدللہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر میں جو آپ نے پہلے سوالات کیے ہیں اس کو ایک تکمیل کی حد تک میں آگے بڑھاؤں گا. ایک نقطہ یہاں پر عرض کروں گا. دیکھیں, ماہ مبارک رمضان ہے, اپنی تمام برکات اور رحمات کے ساتھ رخصت ہو چکا ہے. ہمیں خوشی بھی ہے عید کے حوالے سے, اور ایک لحاظ سے غم بھی ہے. حقیقت میں دیکھا جائے اگر ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے تو وہ یہ تمنا کرتے کہ پورا سال ماہ مبارک رمضان ہو.
بالکل آگاہ آپ کی اس بات کو ہم جاری رکھیں گے. ہمارے پاس ایک نیوز بریک کا ٹائم ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم اس بات کو جاری رکھیں گے. ناظرین, ایک آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیوز بریک کے بعد, کہیں مت جائیے گا. ہم یہاں پہ مختلف حوالے سے گفتگو کریں گے, عید الفطر کے حوالے سے, اور مجلس علماء شیعہ یورپ کی تمام کیبنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ہمیں دیکھتے رہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.